आगे बढ़िए। अब ये जो आयत आ रही है ना खास तौर पे, ये अबू खैसमा के ऊपर बराह रास्त आती है। मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिर्दो पेश हैं, इनको ये लायक नहीं था, इट डजंट सूट्स देम, ये जेबा नहीं था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं और ना कि अपनी जान को उनकी जान से अजीज समझें। ये इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकन पहुंची और जो भूख लगी और जो किसी ऐसी जगह चले जो कुफार के लिए मुजबे गैस हुआ हो और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला के हाँ मुहसिनों का हक मारा नहीं जाता, यानी अल्लाह ताला मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनके कामों का अच्छे से अच्छा बदला दे। मुसलमानों को ये नहीं चाहिए था कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जब के वो इनके पास आएं डराएं ताकि वो डर जाएं। क्या पता चला इधर अल्लाह सुबहान तआला ने कूनू मा सादिकीन के बाद अब कुरान समझने सीखने का एक मेयार दिया, बड़ी अहम आयत है। आप देखिए कि जब गजवाए तबूक के मौके पे इतनी ही बात हो गई तो सहाबा में से जो बाकी लोग थे उनके दिल में आया कि जब अगली जंग कोई हुई ना तो हम सब निकलेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, नीड ऑफ दी आर, वक्त की ज़रूरत क्या उसको पहचानो, ये भी एक बहुत बड़ी हिकमत होती है। और ये जो कुरान की आयत हम इस वक्त पढ़ रहे हैं ना, जिसमें वमा कानल मोमिनून लियनफिरु काफा 122 है, अहम तरीन आयत है। अब इस पर ज़्यादा बात कर नहीं सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नूरुल कुरान प्लेटफॉर्म पिछले तकरीबन 22 इयर्स प्लस से इसी आयत के तर्ज पे आपको कोर्सेज ऑफर करता है। पहले तो ऑन साइट पे था, अमेरिका से ये काम शुरू हुआ, कनाडा अमेरिका के इर्द गिर्द घूमते हुए अल्लाह फिर यूरोप में नॉर्वे के रास्ते ले आया, बल्कि कहूँगी तो मैनचेस्टर के रास्ते से ले आया। वहाँ से निकले तो लंदन, लंदन से निकले तो पेरिस, पेरिस से जर्मनी, बल्कि जर्मनी तो पहले ही शुरू हो गया। फिर इसी तरह इर्द गिर्द डेनमार्क और जो भी और शंगन कंट्रीज है, वहाँ से होते हुए ये काफिला जोहराबाद के रास्ते पाकिस्तान आया। यही मेथडोलॉजी है, कोई एक कोर्स भरपूर तरीके का ऑफर किया जाता है, सबको दावत मिलती है, सब इलाकों से आए। मैं आपकी मिसाल दे देती हूँ, आपको दूसरे नामों से क्या लगे, कराची में कोई एक कोर्स ऑफर होता है, लांडी के भी आओ, कोरंगी के भी आओ, फेडरल बी एरिया के भी आओ, नाजमाबाद के भी आओ, गोलीमार के भी आओ और भादराबाद से भी आओ, और कुछ वक्त बैठ कर अपने आप को खपा दो। एक ख़ास माहौल, एक ख़ास रूल्स के अंदर एक कोर्स करो। देखिए क्लासेस बहुत सी होती हैं, कोर्सेस नहीं है। मैं अपने कंफर्ट जोन से हफ्ते में आपको एक क्लास देने आती हूँ और दे के चली जाती हूँ, और आपके ईमान को मैं वो माशाल्लाह ऊपर चढ़ा देती हूँ। अगले हफ्ते आऊँगी मैं आपके पास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन याद रखिए, मेरी ज़िंदगी का आपको निचोड़ दे रही हूँ इस जुमले में, रिप्रोडक्शन नहीं होगी, मैं सेटिस्फाइड हूँ। देखिए मैं एक टीचर हूँ ना, आपको भी लग रहा है, आज मैं आपके घर आऊँगी, कल मैं कुरंगी जाऊँगी, परसों मैं सदर में जाऊँगी, उससे अगले दिन मैं डिफेंस में जाऊंगी, उससे अगले दिन क्लिफ्टन में जाऊंगी, और मैं इतवार की भी नहीं छुट्टी करूंगी। मैं हफ्ते में 7 दिन बिजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बीइंग अ टीचर आई एम सक्सेसफुल, लेकिन बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशनल कह लीजिए के सेटअप आई एम नॉट सक्सेसफुल। वजह पूछिए, किसान अगर आज गंदम लगाए बीज तो वो कब उगनी चाहिए, कुछ महीने बाद? या मैं हफ्ते में एक दिन आपको अगर कोई चीज़ दूंगी, तो मैंने खुद भी ज़िंदगी में तजर्बे किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका से रब का पैगाम हम सब के नाम शुरू किया था, हर हफ्ते के हफ्ते बस एक क्लास होती थी, वीकेंड क्लास, नॉर्वे में आके पूरी हुई। मेरा गुमान है कि 9 से 10 साल के अंदर वो कोर्स पूरा हुआ था। मेरी तो छोड़ दीजिए, ये आप हर तरफ देख लीजिए, मैं जब अमेरिका गई तो मेरी सास, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, आफियत दे, बहुत अच्छी खातून है, आप भी उनके लिए दुआ किया करें, तो वो बुध के बुध एक क्लास लेती थी, मैंने भी उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो क्लास पूरी हुई, तो जिस दिन तकमील थी ना, तो मैंने फिर जो साथी थे उनसे पूछा सुना है, और आपको तो वो क्लास कितने साल में पूरी हुई थी, 18 ईयर में। कोई एक भी ऐसा नहीं था उस क्लास में जिसने फातिहा से नाश्ता पूरा किया हुआ था। बस मोटिवेशनल है, आते गए लोग, सीखते गए, अकीदे बदल गए, कहीं आते बदली, खत्म। रिप्रोडक्शन नहीं होती, दैट इज़ नॉट द वे ऑफ इस्लाम। टीचर्स कामयाब हैं आज माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगियां दे और बरकतें दें टीचर्स को, पूरी दुनिया में ऐसा है कई जगहों पे, लेकिन बीइंग अ इंस्टीट्यूशनल वी आर नॉट सक्सेसफुल। वजह क्या कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, जो फैक्ट्री रिप्रोडक्शन ना दे वो चलेगी कैसे, हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जब मैं एक दिन जो आपको आऊँगी पढ़ाने, तो मेरा ये कोर्स एटलीस्ट 7 से 8 साल में पूरा होगा, बच्ची बालिग होकर शादीशुदा हो चुकी होगी, शादीशुदा बच्चों वाली हो चुकी होगी, बूढ़े रुखसत हो चुके होंगे। ये भी बहुत अच्छा है, दैट इज़ एपेटाइजर। बिगनिंग में ये बहुत अच्छा रहता है, नए लोग हैं वो नहीं आ सकते कोर्सेज में, वो कमिटमेंट नहीं करते, तौबा तौबा हो गए, इतना लंबा कोर्स वीलुल जन्ना, 8 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 5, उनको ना चले, उनको ये दीजिए, बट दैट इज़ नॉट द परमानेंट सोल्यूशन। तो ये आयत आपको बताती है कि कोई तो हो, लहू लनफर अमिन, कुछ तो हो, कुछ तो आप जैसे डिवोटेड लोग हों जो एक से दो जगहों पर भी चले जाते हैं, दो दो चार चार घंटे बैठ जाते हैं, तो जब ये पढ़ के जाएंगे ना, फिर ये ट्रेनिंग लेंगे, उसका नूरुला नूर कहते हैं, फिर उसके बाद इनको हिकमत सिखाई जाती है, फिर ये अपने अपने इलाकों में फ्रेंचाइज बनकर अपने पीछे नेकियों की खैर की बहारें छोड़ कर जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी है, बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा है इखलास से हो रहा है। 2018 पाकिस्तान में हमारे पहले कदम पड़े, उससे पहले था इस्लाम, सियालकोट का मदरसा उससे भी पहले का, लाहौर में भी क्लासें हो रही थी, लेकिन वही बात कहूँगी, वो कोर्सेज नहीं थे, वो क्लासें थी, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के बगैर था, रिजल्ट्स जीरो, या जितने भी अजर तो मिलता है, फ़ायदा भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसी के बीच तो फूट के फिर बाद में लोगों में आए। लेकिन इस प्लान को जौहराबाद में हमने इम्प्लीमेंट किया, आप में से बहुत सारों के लिए लफ्ज़ जौहराबाद नया होगा, 4 साल पहले ये मेरे लिए भी इतना नया था कि मैंने पहली दफ़ा पूछा था ये इंडिया में, बिलीव मी आई एम पंजाबी, पंजाब में पैदा हुए, पंजाब से ताल्लुक, नहीं पता था जौहराबाद किधर है। लेकिन आज आपको एक बात बता दूं बस, कि जहां आपके जाने के बाद भी बीज डालने वाले और पानी देने वाले हों, उधर खप जाएं, मेरी ज़िंदगी का खुलासा है। और अगर आपके जाते ही बसात उलट दी जाए, और आपके जाते ही खुले, और आपके निकलते लोग का चलो शुक्र है चले गए, एक ट्रिप और ख़त्म हुआ, अब जब दोबारा आने वाले होंगे फिर सोचेंगे, और हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं। मैं तो कभी एक दिन अपनी ज़िंदगी का बहाना ना दूँ, एक क्रोन ना दूँ, एक डॉलर ना दूँ, एक रुपया ना दूँ उस जगह पे जहाँ मेरा मल्टीप्लाई ना हो। तो मेहनतें कर लें, आपकी मेरी उम्र अब कौन सी, हम सब मिडल एज के हैं ना, इल्ला माशाल्लाह, कुछ 20+ भी होंगे, जिन्होंने 20+ ही रहना चाहे वो 50 के भी हो जाएं, क्योंकि 20+ तो 20+ ही होता है ना। लेकिन आइए मिलकर कुछ ऐसा काम करें कि हमारी कमजोरियों के शुरू होने से पहले, हमारे घुटनों में दर्दों से पहले, हमारी मेमोरी लॉस और हमारी कमर में दर्द से पहले, हम इस शहर में एक फसल छोड़ जाएं। क्या ड्रीम है। 2018 में पहला दौरे कुरान जोहराबाद में हुआ था, उससे पहले बस मैं एक ही दफ़ा वहाँ गई थी, एक लेक्चर, मैं नहीं जानती थी क्या था, लाहौर के रास्ते मुझे जोहराबाद का पता चला, मेरी एक क्लास होती थी, 2018 में मैं आई थी, तो पता चला कि आज आपको कुछ लोग मिलने आए हैं, बाद में लोग मिलते हैं, मुलाकात हुई, खाने पे उनको रोक लिया, बैठे, उन्हें कहा हम जोहराबाद से आए हैं और व्हाट्सएप के थ्रू सुनते हैं हम आपको, दैट्स वाज द थिंग। बड़ा अच्छा तारुफ रहा, बड़ी अच्छी डिसेंट सिस्टर्स थी, चली गई। बाद में जिनके ज़रिए ये सब हुआ, उनसे मैसेज आने शुरू हो गए कि वो अब आपको जोहराबाद बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा वेयर इज़ जोहराबाद, किधर, और उस वक्त हम कोई बहुत डॉक्यूमेंटेशन में थे स्कूल की ना, सो बिज़ी, मैंने कहा मुश्किल है, वो समझे कि शायद हम लव जोराबाद से इम्प्रेस नहीं हुए कि क्या गांव में जाएं, मिट्टी कट्टा और छोटा शहर है, कोई गांव है। उन्होंने पैगाम दिया कि उन्हें बताइए कि हम वहाँ बहुत अच्छा सेटअप करेंगे, हम 600-700 लोग जमा कर लेंगे। मैंने कहा उस बिल्ल ने शैतान ने रजी, मुझे तो कभी लोगों से फ़र्क ही नहीं पड़ा, एक हो या 100 मेरे लिए एक बराबर है वल्लाही। खैर मैंने एक क्राइटीरियन रखा, मैंने कहा शायद हम अपनी टिकट आगे करें, अगर हो गई तो फिर देखेंगे, अल्लाह का हुक्म टिकट आगे हो गई तो दरवाज़ा खुल गया खैर का। उन्होंने हमें बुलाया एक दिन, शायद 8 फरवरी था, याद है, ज़िंदगी को आसान बनाओ, एक सिंपल से टॉपिक का लेक्चर रखा। साथ ही उधर से गाड़ी आई और हमें हमें पता ही नहीं था जाना किधर है आपके सर, और हम चल पड़े उधर, चले गए। जब मैं वहाँ पहुँची तो जो हमारी होस्ट थी, बिल्कुल सिंपल घर, यानी कोई पंपी नहीं, कोई ग्लैमरी नहीं, नथिंग एल्स, पर उनके अंदर जो उनकी आंखों में एक चमक थी और जो उन्होंने सिंपल सा खाना हमारे आगे रखा, मुझे उसी से पता चल गया कौन हुआ सादिक, ये हैं सच्चे। इनको कोई फिक्र नहीं है कि हम कौन और कहाँ से आए हैं, क्या होगा। बस आपको पता है कि वो हमें क्या कह रही हैं, हम कल गए थे और उन्होंने एक शादी हॉल है वहाँ बहुत बड़ा, उसका एक हॉल ले लिया, पता कि वहाँ दर्स होगा, और वो सारा वक्त फ़ोन पे बातें कर रही हैं और मैं दूसरे कमरे से सुन भी रही थी खाने के दौरान। वो कह रहे हैं अच्छा ये हो गया, वो हो गया, अच्छा और कर लें, और कर लें, कुर्सियाँ लगा दें, ये कर दें। 1-1.5 घंटा पहले हम पहुँचे और निकल गए, फ्रेश अप हुए, गए और चले गए। मुझे कहने लगी कि बहुत सारे लोग वहाँ आ गए हैं। मैंने कैसी बातें करती उस वक्त तक, मैं खुद यकीन से कह सकती हूँ, ऑनलाइन नहीं लेकिन ऑन साइट, मैं अपने लेक्चर जो पूरा अमेरिका से लेकर यूरोप का सफ़र है, मैंने 200-300 से ज़्यादा लोग नहीं देखे हुए थे दरसों में। आप पता कि उस दिन क्या हुआ, जैसे शादी हॉल होते हैं वो हॉल भर गया, कुर्सियां खत्म, राहदारियों में लोग, फिर उसके साथ एक और है ऐसे जैसे इसके आप दरवाजे खोल देना तो पार्टीशन थी वो खोल दो, उधर भी सब साउंड सिस्टम बेकार हो रहे हैं। और बाहर जब मैं गई, यकीन करें हमारी गाड़ी उन्होंने अंदर तक ले गए, रिक्शे पैदल, जैसे हरम में जाने वालों का रश। मुझे समझ ना आई कि ये हो क्या रहा, मेरा माइंड बिल्कुल माफ था, कभी हरम में और इधर उधर के रश ऐसे देखे होंगे। मैंने कहा इधर हमें जानता भी कौन है, वल्लाह ही लोग हमें नहीं जानते थे, मेरा गुमान है, लेकिन उन्होंने कहा ये लोग आपको व्हाट्सएप से सुनते हैं या जो भी लोगों की कोशिशें थी। बस वो एक दर्स हुआ, और बाद में इन्होंने बताया कि उस दिन मतलब उनके रिकॉर्ड के मुताबिक मोर देन 3,000 लोग उस हॉल में बैठे हुए थे, नाम उसे क्या होता है। बहरहाल ये था वो पहला तारुफ। उसके बाद हमने एक नाइट स्पेंड करनी थी उधर और अगले दिन वहीं से फैसलाबाद जाना था। ऐसा किया कि ट्रायंगल बन जाए और बैक एंड फोर्थ लाहौर कोई ना हो। कैन यू बिलीव जिस चीज़ ने मेरे कदम पकड़े जोहराबाद में, आज मैं आपको बता जाती हूँ कि मैं कहाँ रुकती हूँ और कहाँ जाती हूँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात जो हिजरत की रात आपने अबू अय्यूब अल अंसारी को क्या कही थी कि मेरी ऊँटनी मामूर है, जहाँ ये रुकेगी मैं वहाँ रुक जाऊँगा, जहाँ ये चलेगी मैं चला जाऊँगा। जिस चीज़ ने मुझे जोहराबाद के लिए सोचने पे माइल किया, एक दिन हम पहुँचे प्रोग्राम से कुछ पहले और मेरे हाले 3 बजे का प्रोग्राम था, 1:30 यानी 1 बजे के करीब पहुँचे होंगे। जुमा था अगले दिन, लंच के बाद हमने फैसलाबाद के लिए निकलना था। आप बिलीव करें कि लेस देन 24 आवर हमने स्टे किया और इन लोगों ने मुझसे 5 प्रोग्राम कराए, मैं अभी भी उंगलियों पर गिना सकती हूँ। पहला प्रोग्राम वो हुआ जिसमें इतने लोग आए, वहाँ से फारिग कर करा के शाम को उन्होंने अपने घर में कहा हमारी एडमिन्स मिलेंगी जो हमारे दीन का शौक रखने वाली हमारी टीम, आज भी हमारी बड़ी प्यारी टीम है वो सारी साथी। उन्होंने मुझे फिक्र याद है कि हम 60-70 लोग हैं जो कई साल से कोशिशें कर रहे हैं इधर, कभी कुछ वो आएंगे। अल्लाह अकबर, जब वो आए तो वो घर का हाल बता क्या था, वो भी सुनेंगे तो हंसेंगे जैसे किसी गाँव में दुल्हन आए और सारा गाँव उसको मिलने आ गए, ये हाल था। सीधे लोग और मैं अजीब सी गुम गुम है, उधर भी कुछ बोले कुछ करे, मोहब्बतों से भरे हुए लोग, प्यार सादगी खून नमाज सादिकीन पे ये कह रही हूँ। अगले दिन पहले प्लान था बना हुआ, रात को उनको फारग कर करा के हम सोए, खाया पिया जो भी था। अगले दिन इन्होंने मुझे कहा कि उस्ताज़ा फजर के बाद सोना नहीं, ये नहीं, 7 बजे हमने आपका एक प्रोग्राम रखा है, नर्सिंग कोई कॉलेज है जहाँ नर्सिंग की ट्रेनिंग होती है। चले जी, मेरी ज़िंदगी में 7 बजे का दर्स था ही नहीं कभी। इन्होंने मुझे पकड़ा, मैं कहा कितनी दूर है, बस पास है। हम किसी कॉलेज में गए, वहाँ पूरा एक क्लासरूम ऐसी आपकी तरह था और वो नर्सिंग स्कूल में उनकी क्लासेस शुरू होने से पहले का टाइम था। मैंने वहाँ तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट बात की, देखा घड़ी टाइम नहीं है, क्यों जल्दी करें घर जाएं, सर को नाश्ता दें, इसके बाद अब आपका एक दर्स है गर्ल्स कॉलेज है। उन्होंने 9 बजे मेरा एक और प्रोग्राम रखा था, 7 से 8 इनको फारिग करके घर आई, सर जी को जो देना जल्दी दे दिला के चले जी जल्दी करें वहाँ जाना है। और मज़े की बात यह कि हर चीज़ 5 मिनट के फासले पे, ओनली गर्ल्स कॉलेज था। इन्होंने मेरे से वहाँ दर्स ले लिया, 9 से लेके 10 10:30 लगे उनके प्रिंसिपल हमें कॉलेज में ले गई, ये करें वो करें, नहीं जी जल्दी करें जुमे का टाइम है। इन्होंने चौथा प्रोग्राम मुझे एक मस्जिद थी वहाँ औरतों का भी नमाज का टाइम था, अब वहाँ चले मुझे ये वहाँ ले गए, बड़े सुकून से जुमा पड़ा, वहाँ लोगों से मिले, अब क्या चीज़ जल्दी करें, इसके बाद फुलान डॉक्टर है बड़ी प्यारी। उन्होंने अपने घर में लंच रखा हुआ और अपनी सारी कुलीग्स को बुलाया हुआ, और वो लोग दरसों वदरसों में नहीं आते, वो बस लंचेस में आते हैं। और सच्ची बात है, हर जगह कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लंच और डिनर्स पे ही आते हैं। ये मुझे उधर ले गए। बहरहाल वहाँ हमारा एक बड़ा लेयर मोड में रोक रहा है, मर ये हुआ, और उधर से ही चाय पी के तो बाहर गाड़ी खड़ी थी, हम फैसलाबाद चले गए। जब मैं गाड़ी में बैठी तो फिर मैंने सोचा मेरे से क्या हुआ है। ओनली 24 आवर में इन्होंने मुझे 5 दफ़ा यूज़ किया। दैट इज़ द बेस्ट प्लेस आई कैन इन्वेस्ट माई सेल्फ। अल्लाह की कसम, उस दिन नियत कर ली थी, मैं, मेरा माल, मेरी जान, मेरा वक्त, और आज वहाँ 6 फसलें गुल चुकी। मैं किसी और जगह वक्त क्यों लगाऊं? ये तो मैं आपकी मोहब्बत में इधर आई हूं, और लोगों ने कितना कहा मुझे, क्या आप कराची छोड़कर, इस्लामाबाद छोड़कर, लाहौर छोड़कर जोराबाद क्यों गई? मजे की बात बताऊं, इसको कहने लगे एटॉमिक एनर्जी है उधर, ये अमेरिका से आए हैं, अमेरिका ने बेचे। ऐसी भी बातें सुनी, लोगों को समझ नहीं आती। देखिए, एक बंदा अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा, फजूल खर्चियों में? मैं तो नहीं, मैं आपके 5-6 फुट के वजूद को जाया कर दूं सिर्फ गॉसिप में? ये है कुनुमा सादिकी। और आज तक माशाल्लाह मैंने बहुत थोड़ा टाइम दिया उनको, सच बताऊं उनको मेरे से आज भी गिला है, वो मुझसे अंदर से खुश नहीं है, मैं ये आपको बता रही हूँ। लेकिन अगर मैंने कहीं रुकना होता तो मैं अमेरिका में रुक चुकी होती। जब अमेरिका छोड़कर हम नॉर्वे आए थे ना, वल्लाह यही बातें तब भी सुनी थी कि अमेरिका छोड़कर नॉर्वे जा रहे हैं, किसी ने कहा डॉलर छोड़ के क्रोन पे जा रहे हैं। मैंने कहा अगर पैसे कमाने जा रहे होते तो वाकई बेवकूफ़ी थी। किसी ने कहा 50 रियासतें, 50 स्टेट्स घूम ली हैं आपने, वहाँ पैगाम दे दिया आपने, बातें तो सबको सुननी पड़ती हैं, हमारी भी फैमिली है, ऐसे तो नहीं हम बैठे हुए इधर, हमारे भी प्यारे हैं, हमें भी दुआओं में याद रखते हैं लोग, मिस भी करते हैं, माओं को जरूरत होती है बच्चों की। लेकिन ये काम ऐसे होता नहीं है, ये साए खून वाला काम ऐसे नहीं होता। कंफर्ट जोन में आप बड़े मजे से उठे हैं, चले जी कुछ नेकी कर ही आऊं, और वो करूंगी जो मैंने करनी, साथ अलग घर में नहीं करनी, इधर करूंगी बस, ये साबा नहीं थे। जब तक आप बेआराम नहीं होंगे, इस्लाम का आराम नहीं मिलेगा। साहबा ने ये दिया था, अपना घर बार छोड़ा था। हम कहते अबू बकर घर छोड़कर आ गए, ये क्यों बड़ी बात थी? आपके क्लोजेट से कम सामान था अबू बकर के घर में, कौन पूछता? यही तो अल्लाह कह रहे, थोड़ा हो के ज्यादा। अल्लाह को कोई परवाह नहीं है कि आप 1 दे रहे हैं, 100 या लाख, अल्लाह के लिए सब जीरोज हैं। वल्ला ही एक जीरो लगा दें 10, एक और लगा दें 100, एक और लगा दें 1,000, एक और 10,000, आपके जीरो बढ़ते जाएंगे, अल्लाह के लिए वो जीरो है। आप खड़े हो जाएं कूनुमा सादिकीन और निकली अल्लाह के रस्तों में, तो जीरो अल्लाह लगाता रहता है। और जितने जीरो अल्लाह ने नूरुल कुरान को लगाए हैं, अल्लाह की कसम, ये अल्लाह से ज्यादा कोई कदरदान नहीं है। और किसी जगह हमारे जहनों में कोई ऐसी बात ही नहीं, इतने छोटे, इतने लो प्रोफाइल पे हम काम करते हैं, ना सबके ना लाख के, अल्हम्दुलिल्लाह। साथी एक से एक प्यारा, जगह एक से एक साथी, ऐसे हर जगह खूब से खूबतर। और आपसे तो जब मैं डर रही हूँ कि मुझे मोहब्बत ना हो जाए, क्योंकि मेरा मसला है मुझे मोहब्बत हो जाती है लोगों से, मैं किस किस को याद करूँ? मैं एक जगह जाती हूँ मुझे दूसरे याद आते हैं, सच्ची बता रही हूँ, दूसरी जगह जाती हूँ मुझे तीसरे याद आते हैं। लेकिन अल्लाह ने ये जो काम दे दिया ना, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफ्फा, वो जैसे कहते हैं ना कि अंतड़ियाँ, माओं के जो बच्चे होते हैं ना, वो अंतड़ियाँ होते हैं, यकीन करें हर स्कूल मेरी अंतड़ी है, जहाँ तक अल्लाह ने बुझा दिया थोड़ा बहुत, जिससे कुछ ताल्लुक है उनकी तो फिक्र है, उनका बच्चा बीमार हो जाए चांद पे पड़ जाती है, उनकी कोई और मुश्किल पड़ जाए चांद पे पड़ जाती है। मैं कहती लोगों को अपने 2, 3, 4 बच्चों का गम होता होगा, तो दीन पे आकर तो आपकी फैमिली इतनी बड़ी बन जाती है, कोई दुआ के लिए कह रहा है, कोई कुछ के लिए कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकते मिनहुम ताइफा, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इसमें खपा दे। दीन का काम, तालीम का काम, फोकस होके हिरा में जाकर बैठ के करने वाला काम है, कोहे तूर पे जाके खड़े होने वाला काम है, बतबत्तल इलैहि तबतीला वाला काम है। ये रौनक और महफिलों और खाते पीते हंसते बोलते नहीं होता, कुछ कुछ हो जाता है लेकिन फुल टाइम नहीं होता। नस्लों की तरबियत का काम और सदक़ा जारिया के खजाने बहाने का काम, खून خون بہائے بغیر نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کا سارا منہج یہی تھا کہ یزکیہم اور یعلمہم الکتاب اور وہ ساری باتیں جو آپ پیچھے آیتوں میں پڑھتے آتے ہیں. کچھ لوگوں کو فل ٹائم یہ کام کرنا پڑے گا. اور آپ دیکھیں یہاں لیے تفقہ فی الدین ہے, اور ہمارے یہاں لفظ فقہ آتے ہی چار مسلک, فلاں 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 فلاں. یہاں فقہ سے مراد وہ فقہ نہیں ہے جو آج انڈو پاک میں مشہور ہے. یہاں فقہ دین کی روح, دین کی اصل. اور تفقہ فی الدین کا مطلب کہ اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کر آپ کو سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہو جائے, معرفت حق, مقصد حیات نظر آ جائے, اور آخرت کی بنیادوں پہ آپ اپنی زندگی کی تعمیر کریں. اور اس کے بعد انذار, لینذروا. ہر بندہ یہاں سے دائی بن کے اٹھے گا. ہمیں ایک بردر نے کمنٹ دیا کئی سال پہلے, کہتے ہیں آپ نور القرآن کی ویب سائٹ پہ لکھ دیجئے ٹیچرز پروڈیوسنگ انسٹیٹیوٹ, کیونکہ آپ کی تعلیمات کے بعد کوئی بندہ ٹیچر بنے بغیر رہ نہیں سکتا. جس کو آتا ہے جس کو نہیں آتا اس کا بھی دل کرتا ہے کہ میں پڑھانا شروع کر دوں, کیونکہ آگ لگ جاتی ہے اندر, نہ بیٹھنا ہے نہ بیٹھنے دینا ہے. اور سچ یہی ہے, کامیابی یہ ہے کہ آپ ٹیچرز بنائیں. اور ٹیچرز ایسے نہیں بنتے, کمفرٹ زون میں نہیں بنتے. لیا تفقہ فی الدین. اور پھر جب ہر بندہ منذر بن جاتا ہے نا, انذار کا کام کرتا ہے, پھر لوگوں کو آخرت یاد آتی ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں کہ جو لے لے کے پھرتے ہیں کہ ماذا ينفقون ماذا ينفقون. دو دفعہ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا یسألونک ماذا ينفقون. دیکھیں صحابہ اور ہم میں فرق نوٹ کر لے. صحابہ یہ کہتے تھے اللہ کے نبی ہم کیا خرچ کریں, اور آج معاف کریے معذرت کے ساتھ مجھے بڑی چڑ ہے لفظ ڈونیشن سے. آج کا دیندار کہتا ہے کچھ تو دے جاؤ نا, کوئی ہمارا بھی خیال کرنا, ہماری مسجد کو بھی دینا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مانگ کے کپڑے پہننے ہیں میں نے, مانگ کے کھانا کھاتے ہیں, تو دین کے لیے مانگیں گے. نہیں مانگنا آپ نے, وہ دے جن کو دینا ہے. دیکھیے جس کا سلم ہے وہ علم دے, جس کے پاس مال ہے وہ مال دے گا, جس کے پاس گھر ہے وہ گھر دے گا, جس کے بچے ہیں وہ اپنے بچے لے آئے گا, جس کے اسکلز ہے وہ کہتا ہے لے آنا. اس میں دینے والے بننا ہے, مانگنے والے نہیں بننا. آج جو مسئلہ ہمارے دین کا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ, سارا نصاب ہمارا پوری سیاہ سطح پڑھا دیں گے. قرآن کوئی نہیں ہے, فقی کتابیں 6-7 پڑھ جائیں گے, قرآن کا لفظی ترجمہ کوئی نہیں ہے. دو چیزیں نوٹ کیجئے گا, پورے اسلامی تعلیم کے نصاب میں دو چیزیں ہیں. مجھے پتا ہے آپ کیا سوچیں گے, قرآن اور سنت یہ ایک ہے. لوگوں کو قرآن پڑھائیں, قرآن سے جوڑے, قرآن کا نوٹ ڈلے. دوسری چیز, اس جس گروہ سے آپ بات کر رہے ہیں نا, مخاطب کی زبان آپ سمجھتے ہو, اس کی سوچ کو جانتے ہوں, اس کی سائیکک کو جانتے ہوں. اور الحمدللہ یہ جو آج سارا دکھ سکھ کر دیا نا آپ کے ساتھ, میں خود بھی سوچتی ہوں کہ اگر اتنی گھاٹ گھاٹ کا پانی اللہ نے مجھے نہ پلایا ہوتا, چار لفظ مجھے نارویجین کے نہ یاد ہوئے ہوتے, کوئی دو کو لفظ مجھے کہہ لے آپ کے فرینچ کے نہ آتے ہو, اور کچھ ڈچ یہ نہ آتے, اور میں جتنے کلچر میں رہی ہوں, میں پریکٹیکلی رہی ہوں کئی کئی سال کئی جگہوں پہ, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا گھر کدھر ہے, تو میں کہتی ہوں لوگوں کے دل, رہنے کی بہترین جگہ وہی ہے. کہاں رہتے ہیں, لوگوں کی دعاؤں میں رہتے ہیں. لیکن گھر وہ ہے جہاں دل لگتا ہے, میرا گھر وہ ہے جہاں مجھے کام کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج امت مسلمہ نے صحابہ کی سنت کو اجاگر نہ کیا کہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی مدینہ چھوڑ دو. مدینہ چھوڑا صحابہ نے, ایک پیغام ملا تھا نا حجت الوداع پہ, کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں اس پیغام کو غیر حاضروں تک پہنچا دیں, اور اس پیغام کو لے پڑھو, خون شہداء للناس. صحابہ کو اللہ کے نبی کا یہ جملہ اتنا پیارا لگا کہ مدینہ خالی ہونے لگا. ہم مدینہ جاتے ہیں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ادھر اب حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوتی, آپ دیکھیں نا ایران, عراق, روم, فارس, حبشہ, یہ کب مسلمان ہوئے نا. آپ آج سوچیے نا کہ کسی نان مسلم ملک کا نام لیجیے مسلمان ہو جائے, تو وہاں اسلام کون پھیلائے گا؟ سیاستدانوں نے نہیں پھیلانا, علماء نے جانا ہے ادھر. پھر وہاں معاذ بن جبل جاتے تھے, پھر ابو ہریرہ کی کوشش. یعنی دین میں آرمی, فوج, اور دین کا کام کرنے والے, یہ دو لازمی کمپوننٹ تھے. جہاں سے علاقے فتح کر کے وہ آگے پہنچ جاتے واریئرز, فوجی, और इल्म वाले उस इलाके में फैल जाते, और मैं तुम्हें तर्जमा पढ़ूँ, मैं तुम्हारी अली बात ठीक कराऊँ, और लिए तफक्कहू फिर दीन। हर बंदा फौजी था और हर बंदा आलिम था। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी बातों से समझने वाला बना दे। और इतने लोगों से इंटरेक्शन के बाद जो सोच खुलती है ना, इसके बगैर तो मैं कहती हूँ कि दीन का असल रुख भी नहीं समझ आता। कुछ बातें आपको पाकिस्तान में समझ आती हैं, कुछ अमेरिका में आती हैं, और कुछ आपको यूरोप में, और कुछ फिर पाकिस्तान में समझ आती है। ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं खुद सोचती हूँ अल्लाह तेरी दुनिया में इतने प्यारे लोग हैं। एक चीज़ मुझे हर स्टेशन पे कॉमन मिली, मैं आज जब ये तैयारी कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि आखिरत में तो अल्लाह तेरी जन्नत प्यारी होगी ना, तू तेरा वजूद तेरा दीदार। भले इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज़ क्या है, आप भी सोचें, इस दुनिया में अल्लाह का मास्टरपीस, अल्लाह का शाहकार इंसान है आप। मैं गवाही दे सकती हूँ कि मुझे इस पूरे जिंदगी के सफर में सबसे खूबसूरत चीज़ जो अल्लाह की इस दुनिया में दिखी वो इंसान दिखे, एक से खूबसूरत इंसान। वलकद करमना बनी आदम लकद खलकना इंसान फी अहसन तकवीम, क्योंकि इंसान है जो इन्नी जाएलों फिल अर्दी खलीफा, और हम वही इंसान बैठे अपनी जिंदगी के दुखों सुखों में। और ये जो हमें दुख लगते हैं ना, जान के माल के औलाद के, ये कफारे हैं, इसलिए कि आप सच्चे हैं, अल्लाह ने आपको पाक करके फौत करना है, ये अल्लाह की सुन्नत है। एक आप दीन के रस्तों में ना खपें, अल्लाह आपको बच्चों में खपा देगा। आप इधर माल ना लगाएं, अल्लाह मुकदमों में डाल देगा, डॉक्टरों पे चला जाएगा, और अल्लाह हमारे माल को ज़ाया होने से बचाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक रिवायत सुन लीजिए, 121 आयत के साथ शान नज़ूल की आयत है। मुसनद अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में इस सख्ती के लश्कर की इमदाद का तذکرہ किया। किसको कहते हैं सख्ती का लश्कर? जैशुल उसरा, तबुक के सफर को कहते हैं। इसकी रग़बत दिलाई तो उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, 100 ऊँट यानी 100 ऊँट बिमा कजावे के, यानी सामान से भरे हुए लोडेड के माने में, पालान और रस्सियों वगैरह के मैं दूंगा। आपने फिर इसी को बयान फरमाया, फिर उस्मान ने फरमाया 100 और भी दूंगा। फिर एक जीना मिंबर का उतरे, यानी आप ऊपर वाली सीढ़ी पे थे ना मिंबर की, तो एक नीचे आए, फिर रग़बत दिलाई। कुरान में आया ना, ये हरे दिल मोमिनीना, तो उस्मान ने फिर कहा 100 और दूंगा। इस पे अल्लाह के नबी ने खुशी खुशी अपना हाथ हिलाते हुए फरमाया, बस उस्मान आज के बाद कोई अमल ना भी करे तो भी यही काफ़ी है। मैं एक सवाल करूं आपसे, फिर उस्मान ने अमल करने छोड़ दिए होंगे ना? उस्मान की शहादत 40 दिन के फाकों और प्यास में हुई थी, रोजे की हालत में गए थे, खिसार था बिलवाइयों ने किया हुआ। जिनको ये सच समझ आ जाता है, उनको जितनी मर्जी तारीफें कर ले, उनको के बस करे आराम करे, वो कहते हमने नहीं करना भाई, इतना काम अपने ऊपर ना ले, कुछ भी तो नहीं, ये मैं थोड़ी करती हूँ तो वो करते, ये तो फलां करते, नहीं, वो और लेते हैं। कोई लोग सोचते होंगे कि शायद हम इनको बड़ा काम दे देते हैं, आज तक किसी को नहीं दिया, क्योंकि काम देने से ज्यादा लेने वालों की तड़प होती है हमें कुछ काम दे दें। तो अपने लिए अमल के नुक्ते इस खूबसूरत से सबक से लीजिए, सच्चे लोगों का साथी बनना है, कि अल्लाह मुझे ऐसे लोगों से जोड़ दे जो तेरी नज़र में सच्चे हैं। फिर अल्लाह की राह में जो तकलीफ़ आए उनको बर्दाश्त करना है, अल्लाह की राह में खर्च करना है, महज अपनी फिक्र नहीं करनी, दीन की समझ पैदा करनी है और अल्लाह की राह में सफ़र करना है। और अब उसके बाद सूरत ततिमे की तरफ जाती है। ये को दिल नहीं करता पढ़ने को, क्योंकि मुनाफिकीन के तस्करे हैं, इतना अच्छा टेस्ट हुआ हुआ है। साबा और ईमान वाले खून उमा सादिकीन अलियन फिरू काफा, लेकिन हर ग्रोह में हर दौर में कुछ ऐसे भी ढीले ढाले लोग होते हैं जिनका तस्करा है। आयत 123 से 129, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम, ए ईमान वालों इन कुफार से लड़ो जो तुम्हारे आस पास हैं, और इनके लिए तुम्हारे अंदर सख्ती होनी चाहिए, और ये यकीन रखो कि अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो बास मुनाफिकीन कहते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को ज्यादा किया है, बस जो लोग ईमानदार हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं। अंदाज़ा हो रहा है आपको टोन का? जहाँ साहबा के दिल कुरान की बातें सुन के इन महफिलों में खिल जाते थे ना, तो कुछ दूसरी डायरेक्शन के लोग भी बैठे होते थे वहाँ। उनकी पूरी ख्वाहिश होती थी कि नबी की बात की तासीर इनके दिलों पे ना आए और ये कोई बड़े बड़े फैसले ना कर ले, तो वो उठ के ऐसी बातें करते थे, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं, क्या भला, क्या बातें थी, ये कोई बातें हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। यानी बीच बीच में चंक्स लेके, मिसाल है कि अब आज की पूरी महफिल की बातों में आप बड़ी मोहब्बत में जाकर कोई बात अपनी दोस्त को बताएंगी, मैं उम्मीद करती हूँ लोग बताते हैं, अपने घर में बताएंगी, हो सकता है कोई बंदा आपको ऐसी बात कर दे, क्या हुआ, ये क्या बात है, घर छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो आपका कसूर है कि आपने उनको टोटा दिया है, छोटा सा ट्रेलर नहीं दें, आप उनको पूरी बात सुनने को दें। आज का लेक्चर सिर्फ इतने हिस्से को आप सिर्फ ये सोच से कि पूरी बात वो सुन ले, भेज दें, आप फेसबुक के लिंक दे दीजिए, आप मिक्सलर का ऑडियो लिंक दे दें किसी को, आधी बात से कोई फायदा नहीं होगा। जो बात आपको यहाँ इस माहौल में समझ आ रही है ना, यहाँ से बाहर जाकर ऊपर वाली सीढ़ियों में भी नहीं रहेगी याद, एक असर होता है, हम यहाँ भीगे होते हैं। मैं अक्सर मिसाल दे देती हूँ कि जैसे मोमबत्ती जलती है ना, तो जलने के साथ साथ वो नरम हो रही होती है, कभी आपने देखे वो मोमबत्ती यूँ झुकने लगती है, और फिर बिजली आ गई, चलो जी फूक मारो, फिर मोमबत्ती बंद की, ठंडी होकर ना वो वहीं जम जाती है। आप इस महफिल में जैसे हैं ना, यहाँ सुटकर इंशाल्लाह आप ऐसे ही रहेंगे, अगर अंदर आजजी है, नरमी है, दुआएं कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप उसी फेज पे प्रिजर्व हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ऐसा आप में एक भी नहीं है, मुझे यकीन है, दिलों के हाल तो ले जानता है कि अंदर से रिजेंटमेंट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ये क्या अपनी बातें बता रहे हैं, ये क्या बात है, ये क्या, ऐसा क्या, अब ये ना करें, और कोई और भी मसले आ गए हैं, आप यहाँ अंदर से तकब्बुर और ग्रह से सुनेंगे ना, तो यहाँ सुट कर अकड़ जाएंगे, फिर और अकड़ आती है, अल्लाह ना करे कुरान सुन के सुन हो जाए। इसीलिए कहते थे किसके ईमान को ज्यादा किया, कुछ नहीं। अब आगे सुनिए आयत 125, और जिनके दिलों में रोग है, दुआ करे अल्लाह दिल का रोगी ना करे, इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालते कुफर में ही मर गए, पानी में से खुश्क निकले। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये कुरान हर एक को नहीं बदलता, कितने लोग कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, सब तो नहीं बदलते, और लोग कहते हैं वही कुरान है जो आपने पढ़ा है, वो देखे उन्होंने भी तो पढ़ा हुआ है, वो तो सब जायज़ कहते हैं, आपको पता नहीं क्या मसले हैं, तो भाई आप उनको सुनिए, आप क्यों इस स्टैंडर्ड पे आ गए, आपका ये स्टैंडर्ड ही नहीं है, आप अभी प्राइमरी में बैठिए, आप क्यों मास्टर्स करने आ गए, तो याद रखिए कि बताने और कहने के कई लेवल होते हैं, साबा का टॉपिक है ना, तो इस दफ़ा आपको बड़ा हाई लेवल मिल रहा है इसमें, आप इसे जितने लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनसे माजरत, ज़रा डोज हैवी है इस दौरे कुरान की, घबराइए नहीं, आपके लिए सब आज़ादी है, कुछ भी ना करें, सिर्फ सुनते रहें। ये उन महफिलों से उठकर ऐसी बातें फैलाने वाले अल्लाह इनको कहते हैं, जरा सोचो तो सही कि तुम्हें नबी की महफिल में बैठ के हिदायत नहीं मिली, बैठ जाकर तुम ऐसी ऐसी फजूल बातें करते हो, और ये पता कौन सा टोला था, अब्दुल्ला बिन उबई एंड सन्स या कंपनी को, अब्दुल्ला एंड को, बाहर जाके ये कुछ करते थे, वो बैठते ही इसलिए थे कि कुछ बातें उठ के जाके बाहर जो सुन रहे ना उनको फिर डिवर्ट करें या उनको डाइवर्ट करें। अल्लाह कहते हैं और क्या इनको नहीं दिखलाई देता कि ये लोग हर साल एक बार या दो बार किसी ना किसी आफत में फंसते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं और ना नसीहत कबूल करते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं, कनखियों से देखते थे, क्योंकि असल में इनके पोल खुल रहे होते थे ना, तो यूं देखते थे, नजर आबाद उमल आबाद। और बिल्कुल आप नोट करिए, यहाँ मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ, ये सूरत का जो एंड है ना, बिल्कुल सूरत नूर की आखिर कर को भी, मुझे तो कभी गलती लग जाती है कि उसकी आयतें किसकी हैं, एग्जैक्टली वहाँ भी यही रवैया जो यहाँ दिख रहा है, क्या कहते थे, एक दूसरे को देखने लगते कि तुमको कोई देखता तो नहीं, इशारे को नहीं मारते, ये तुम्हारी बातें हो रही हैं, ये उसकी हो रही हैं, फिर चल देते, जैसे आए थे वैसे उठ के चल देते, अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया है इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं, अल्लाह हमारे दिल ना फेरे, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन्स में से हैं, जिनको तुम्हारे नुकसान की बात नहायत गिरां गुजरती है, यहाँ देखिए आखिर में नबी की वो दर्द और बखा की कैफियत, ये आपके दिल पे थी, तुम्हारे फायदे के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमानदारों के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं, नबी की कदर करो, ऐसा दर्द खींचने वाला लीडर तुम्हें नहीं मिलेगा कि जो दिन रात तुम्हारे लिए कुढ़ते और तुम्हारे लिए सोचते हैं, जिन्होंने तुम्हें اللہ سے مانگ مانگ کے وہ لے کے دیا جو تم اپنی کوشوں سے بھی نہیں لے سکتے تھے. یعنی صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق دی, جو کہ ان کو الحمدللہ پہلے ہی بہت تھی. ذرا دوبارہ سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہیں اور جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے, جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں, ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. پھر اگر یہ روح گردانی کریں تو کہہ دیجئے حسبی اللہ, میرا رب مجھے کافی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. غموں سے بے نیازی کی دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ذرا سا اپنے ذہن پہ زور لگا کر سوچیں, میں پوچھتی نہیں, آپ سوچ لیں, پھر ٹیلی کیجئے گا جو میں بھی بتاؤں گی. یہاں یہ دعا کیوں آئی؟ اتنے پیارے صحابہ کی باتیں اس میں اور اتنے کھوٹے لوگوں کے نفاق کا تذکرہ. نبی کو بتا دیا کہ چاہے یہ ابو بکر ہی کیوں نہیں ہے اور چاہے یشرہ مبشرہ ہی کیوں نہیں ہے, لیکن آپ نے نظریں ان پہ نہیں لگانی. حسبی اللہ. ایک اچھا لیڈر لوگوں سے محبت بھی کرتا ہے, ان کی قدر بھی کرتا ہے, لیکن ان پہ ریلائے نہیں کرنا چاہیے. آپ ہیں تو میں ہوں, آپ نہیں ہوں گے تو میں نہیں ہوں گی, آپ یہ کام کریں گے تو میں آؤں گی, آپ نہیں کریں گے تو نہیں کروں گی. لوگ مہرے ہیں, کمزور کچے سہارے, لوگ مکڑی کے جالے ہیں. ابو بکر جیسے شخص کو بھی اگر اللہ نے نبی کا معاون بنایا تو یہ صرف اللہ کی شان تھی. کونوا صادقین. اور دوسری طرف منکرین کی باتیں, کھوٹے لوگ ہیں, آپ کو نقصان دیں گے, تکلیفیں آپ کو دیں گے, تو اے نبی آپ نہ غم کریں, حسبی اللہ. سمجھ آئے فرق؟ نہ اپنے لوگوں پہ نظر, یعنی کوئی کہے کہ میں آپ کے بھروسے پہ یہ کام کروں گی, استغفر اللہ, آپ جیسا کمزور بندہ ہی کوئی نہیں. دعوت طالب والمطلوب صورت حج کے اینڈ پہ پڑھیں گے. تو ساری بات کا خلاصہ, اللہ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے کہ اپنی فکر کرو. اللہ نے صورت کو ایک بڑے خوبصورت موڑ پہ لا کر آپ کو مجھے سوچنے کے لیے تیار کر دیا کہ اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو, کیا کام کرو, نوٹ کر لیجئے, دین کے دشمنوں سے جنگ اور متقی بننا. یہ متقی کون ہوتا ہے آپ کو پتا؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ کوئی خاص گیٹ اپ؟ آج میں آپ کو تقوی پہ ایک جملہ دوں, لکھیں. تقوی بندے اور رب کے درمیان نقطہ ملاقات ہے. جب ایک بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے, جہاں اللہ نے اسے بلا رکھا تھا. ایسی حالت میں تقوی ہی انسان کو اللہ کے قریب کرنے والا بنتا ہے, کوئی اور دوسری چیز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جب اللہ اپنے بندے کو متقی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے نا, تو اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, پھر اللہ کی ساری عنایتیں اس کے ساتھ, پھر اللہ کے خزانوں کی بھی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں, پھر اللہ کہتا ہے جو تم کہو گے میں وہ کرتا جاؤں گا. اور یہ تقویٰ کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو کسی غیر متقی کو نہیں مل سکتا. آپ سیدھے سیدھے چلتے چلتے اللہ کا قرب لے لیں, اللہ تعالیٰ کل آپ کو ہر وہ چیز دے گا جو آپ کی خواہش ہوگی. اس دنیا کو رب چاہی سمجھ کر گزار لیں. آخرت کیا اس دنیا میں, کہنا جو چاہ رہی ہوں کہ آخرت جنت تو ہے, دنیا میں بھی ہے نبی, اللہ آپ کا انجام. ولل آخرت خیر اللہ کا من الاولا, تمہاری پچھلی زندگی سے تمہاری اگلی زندگی اچھی ہوگی انشاءاللہ. دنیا میں جنت مل جاتی ہے اور خیر مل جاتی ہے. تو اللہ نے یہاں تقوی کے اختیار کرنے کی بات کی ہے کہ جتنا تقوی اتنا قرب, اتنی اللہ کی مدد اور اتنی نصیحت سے فائدہ اٹھانا. تقوی والے ہی نصیحتوں سے فائدہ لیتے ہیں, ورنہ تو غیر متقی نصیحت سے ریئیکٹ ہونے لگتا ہے. پھر اگلی بات ہم نے کیا سیکھی اس میں سے, مومن کے نقصان پہ تکلیف محسوس کیجیے، اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھنا ہے اور مومنوں کے لیے شفیق اور مہربان ہونا ہے نفس وسلم کی طرح، اور دوسروں کی بھلائی کے حریص ہونا ہے. سورۃ توبہ کا پیغام، فنعم المولا ونعم النصیر، صرف اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اپنی زندگی کو بدلیے، فرسٹ پرائرٹی اللہ کو بنائیے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہر ممکن کوشش کر کے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا لیجئے، اور سچی پکی توبہ کر لے. پر آپ کو پتا کہ توبہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے نا، اس کا نتیجہ، تذکر کا نتیجہ توبہ ہے. آج بات سمجھ آ گئی ہے نا، تو بس دل بدل گیا. جتنا سبق لے سکیں گے لے لیں، اور خاص طور پہ اسلام کی جد و جہد میں سارا اعتماد حسبی ربی، ایک اللہ پہ. غار حرا سے جسے نبی چلے تھے، نہیں پتا تھا ابو بکر ساتھ دیں گے کہ خدیجہ دیں گی کہ نہیں، اور 2 بلین لوگ ہو جائیں گے، لیکن اللہ پہ نظریں لگاتے لگاتے وہ نکلے، اور اللہم مالک الملک کی صورت میں اس نے خزانوں کی کنجیاں نبی کے ہاتھ میں دے دی. یاد رکھیے کہ رسول کا اپنا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ. رسول ایسے ایمان اور یقین کی زمین پہ کھڑا ہوتا ہے جس میں سے جو خیر پھوٹتی ہے وہ اللہ کے اوپر نظریں لگانے سے پھوٹتی ہے. ساتھ ہی اللہ اچھے دیتا ہے، مال اللہ دلواتا ہے، جگہ اللہ دلواتا ہے، یہ تو ٹوٹکے ہیں، اصل چیز پیچھے اللہ ہے. سارا جہاں بھی ناراض ہو تو رب اگر ساتھ ہو تو کوئی پرواہ نہ ہو، یہ ہے حسبی اللہ. اور نبی کی کڑن کو اپنے دل میں لیجئے، یہ حرص اگر آپ کے میرے دل میں آ گئی، خیر خواہی دوسروں کے لیے آ گئی، تو اللہ آپ سے ضرور کام کروائے گا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ پروانوں کی طرح آگ میں گر رہے تھے، برساتی کیڑے آگ میں گر رہے تھے، اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر ان کو آگ میں گرنے سے روک رہا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے 3704. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ کردار سازی اصل میں آج کے دور کے دائیے دین کے لیے کہ نہ لیجیے. آج بھی اس کرسی پہ اس دعوت کے راستے میں وہی بیٹھے، نمبر ایک جس کا سارا بھروسہ اللہ پہ، لوگوں کی طرف تو دیکھے بھی نہ، کبھی معروف نہ ہو کسی کی جان سے، مال سے، اس کی شہرت سے، اس کے گھر سے، اس کے بچوں سے. حسبی اللہ پہلی بات، اور دوسری بات جس کو بلا رہے اس کے لیے محبت اور خیر خواہی ہو. شکایتیں کرنے کے بجائے شکر کیجیے، جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے پیسفل ماحول بنائیے، اور آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے کر صحابہ کرام امر ہو گئے، آج تک ان کا نام ہے. اللہ کے نبی کا دین قیامت تک نہیں مٹے گا، یہ اخلاص کی برکتیں. آپ کی زندگی میں یا تو اللہ آپ سے کچھ لے لے گا یا آپ کے بعد، اور مخلص لوگوں سے اللہ ان کی زندگی میں جتنا کام لیتا ہے نا، ان کے جانے کے بعد زیادہ لیتا ہے. کئی حاسد کہتے ہیں یہ جائیں جان چھوٹے، یہ دنیا سے جائیں تاکہ ہماری جگہ بنے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے، زندہ ہی ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن پھیلتا ہے نبی کے بعد، عمر، ابو بکر، عثمان کے دور میں اور اس کے بعد. یہی پیغام اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو بہترین نہج پہ لے آؤ، اور اللہ کرے کہ آج کا دن آپ کی میری خیر کا ذریعہ ہو، اور آپ بھی مجھے معاف کریں. اللہ سے بھی معافی ہے کہ میں نے اس دفعہ سورۃ توبہ کو اتنا ٹائم لگا دیا، یہ کوئی ارادے کی باتیں نہیں تھیں، واللہ ہی یا آئی ڈونٹ نو یہ اللہ نے کیوں میرے سے اتنا وقت لگوا دیا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم اگلے حصے میں سے جو پڑھیں گے اس کا بھی حق دیں گے، اور ہمارا پورا یہ سیشن آپ نے وقت کے اوپر پورا ہوگا. بس یہ کہہ لیجئے کہ ایک ڈاکٹر کو بتا کہ یہ گولی صبح شام 3 دفعہ کھانی ہے، 1000 mg کی ہے یا 100 mg کی ہے. میرا گمان ہے، اور میں ہمیشہ ایسی بڑھاتی ہوں، کہ جہاں وقت لگانا ہے وہاں لگائیے، اور جہاں ضرورت نہیں اس کو چھوڑ دیجیے، جتنی ضرورت ہے اتنی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے راضی ہو. خانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.